सूर्यदंशभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति मृच्छति भगवान गीता की पांचवी अध्याय के अंत में 29 के श्लोक के उत्तरार्ध में कहते हैं सूर्यदंशभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति मृच्छति, मुझको सब भूतों का सूर्य जान करके मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ शांति जो है सब कल्याण का वाचक है, इनको मुक्ति को वाचक है। जिसका नाम परम पद है, निर्वाण ब्रह्म है, उसी को यहाँ शांति का नाम सिखा रहे। कोई भगवान की प्राप्ति है, कोई परमानंद की प्राप्ति, वो शांति की प्राप्ति एक ही चीज है। तो परमात्मा की प्राप्ति रूप जो शांति है, उसकी प्राप्ति के लिए भगवान ने कहा कि मुझको सब भूतों का सूर्य जानने से शांति प्राप्त हो जाता है। भगवान को सब भूतों का सूर्य दे जानना, क्या सूर्य का मतलब है कि हेतु रहित दयालु और हेतु रहित प्रेम है, उसको सूर्य कहते हैं। तो भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं वे हेतु रहित दयालु होते हैं, प्रेम होते हैं। भक्तों के लिए भी ये बात कही है कि अदृष्टास्त्र भूतानां मैत्र कुण एवच निरहंकार समुद्र का सुख क्षण। भगवान के भक्तों के लक्षण बतलाते हुए भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्त जो उसको प्यारे हैं वे कैसे होते हैं कि सारे भूतों के मां द्वेष भाव से रहित, किससे जिनका बैर नहीं द्वेष नहीं, और सब के ऊपर दया और प्रेम हेतु रहित दयालु और प्रेमी। माता अपने बच्चों से प्यार करती है, उसमें उसका स्वार्थ रहता है या मोह रहता है, और भगवान के भक्त जो प्यार करते हैं उसमें मोह ममता का नामोनिशान नहीं रहता, केवल विशुद्ध प्रेम विशुद्ध दया उनकी सब पर होती है। सब के ऊपर दया, सब के मां प्रेम। ममता रहित ममता को लेकर के तो गाय की दया बाछे पर और माँ की दया अपने लड़के पर होती है, किंतु भक्त जो है वे तो ममता रहित होते हैं और दयालु होते हैं, प्रेम होते हैं। मैं ममता रहित हूँ इस बात का अभिमान नहीं रहता, इस बात का निरहंकार है, और सुख और दुख की प्राप्ति में क्षम होते हैं और क्षमावान, यानी कोई अपराध करते तो उसका बदला नहीं चाहते। तो ये जो श्लोक में भाव है सूर्यता का भाव है, तो भगवान भी सूर्य, भगवान के भक्त भी सूर्य, हेतु रहित भगवान भी दयालु भक्त भी दयालु, बाकी सब स्वार्थी। स्वार्थनीत सकल जग माही, स्वप्ने हो प्रभु परमानत श्वास के मित्र हैं। जागृत की जो बात है, क्या सपने में भी कोई परमार्थ का मित्र नहीं है, या मैं सभी स्वार्थी हैं, तो कोई भी नहीं है मिले दो को छोड़कर, दो कौन, भगवान भगवान के भक्त। हे तो रहित जग जुगे उपकारी, सेवक असुरामी। हे प्रभु हे असुर जी, हेतु रहित दयालु, हेतु रहित हित करने वाले या तो आप हैं कि आपका भक्त, आपका शिव और दूसरा दिन महात्मा जो पुरुष होते हैं कि तन से मन से धन से सब प्रकार से थी दूसरों का हित करते हैं, जिस किस प्रकार से दूसरों का हित हो ऐसा ही करते हैं। भगवान का तो कोई हेतु रहता ही नहीं, वे तो उनके सूर्य नहीं, किंतु इस बात को जो जान जाता है वो सूर्य बन जाता है, इसलिए उसको बड़ी भारी शांति मिलती है। तो भगवान के सूर्यता की बात आपको बतलाई जाती है, जो भी कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये बात समझ में आ जाए तो हर भक्त प्रसन्नता रह सकती, जो कुछ हो रहा है वो समझ बूझ करके हो रहा है। वर्षा हो रही है तो हमको ये इच्छा नहीं करनी चाहिए कि वर्षा न हो, और वर्षा न हो रही है तो हमको ये इच्छा नहीं करनी चाहिए कि वर्षा हो, क्यों कि जिस प्रकार से थी उचित है वो भगवान कर रहे हैं, और हमारे इच्छा करने से वर्षा होती भी नहीं और रुकने से रुकती भी नहीं, तो हमारा इच्छा करना व्यर्थ ही। यदि कहो कि जिस समय वर्षा की आवश्यकता होती है तब वर्षा नहीं होती, जब वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है तब वर्षा होती है, और जिस देश के वहां वर्षा की आवश्यकता है वहां तो नहीं होती, जिस देश में वर्षा की आवश्यकता नहीं है वहां होती है। ये बात ठीक है, तुम्हारी दृष्टि है नहीं, तुम क्या समझो? बोले हम तो ये समझते हैं कि जो धान है उसकी दृष्टि से थी कि धान को वर्षा की आवश्यकता है, तुम तो एक देशी हो एक तरफ ध्यान दिया कि वर्षा की आवश्यकता है, तुम तो ये दृष्टि देखते हैं कि वर्षा इस समय तो उनसे धान होगा, ये बात मान लेते हैं, किंतु भगवान को हम धान नहीं पैदा करना है तो एक प्रकार से वर्षा कैसे होनी थी, कहां धान पैदा करना है कहां नहीं करना है इस बात को तुम क्या कर रहे? जीवों के जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार तो उसका भगवान विधान करते हैं, भगवान का जो विधान है उसमें अपना दखल नहीं दे। कोई माँ अपने लड़के को मारती है और दूसरा उसमें भिड़ डर कि ये रोता है इसको मारो मत, तो क्या तुम्हारे को लड़का ज्यादा प्यारा है उसकी माँ को प्यारा नहीं? ऐसा कहो तो कौन माने? मारने वाली माँ को लड़का अधिक प्यार है, इतना तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारा प्यार तो दिखाने मात्र का है। एक बार लड़का भी खुश हो जाएगा कि हमारी कुछ करता है, किंतु लड़के का उसमें हित नहीं है, लड़के का हित तो माँ की मार नहीं है। माँ तुम्हें मारती है, ये तुमने थोड़ा ध्यान देकर समझा नहीं। लड़का बदमाश दूसरे लड़कों को बिना किसी को मारता है, गाली काटता है, माँ समझाती है, माँ की बात मानता नहीं तो मां उसको मारती, क्यों मारती है? उसकी बुरी आदत छुटाने के लिए, और मां का कोई लड़के के साथ में द्वेष भाव नहीं है, इसी प्रकार से थी भगवान हम लोगों को देखने में जो कष्ट प्रतीत होता देते हैं हमारे हित के लिए। भगवान जितना हमारा हित सोच सकता है इतना मां भी नहीं सोच सकती। मां में तो मोह है, अज्ञान है, मां में तो स्वार्थ भी है, भगवान में तो स्वार्थ की गंध भी है। उसकी तो सारी चेष्टा हमारे हित के लिए है। तो देख देख करके हमको खुश होना चाहिए। हर समय के बीच के वहां हमको प्रसन्न रहना चाहिए। जो कुछ हो रहा है ये सब भगवान की लीला हो रही है। जब यह बात सुन आ जा रहे तो इतनी प्रसन्नता उत्तर उत्तर बढ़े कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। उसको अनुभव में भगवान की कृपा ही कृपा दिखे। कहीं तो वो समझ आ जाती है, कहीं नहीं आती। नहीं आती है हम वो मान लेता है, जब मान लेता है तो आगे जाकर समझ में आ जाती। मानने के बल पर आगे जाकर समझ में वो आ जाती। एक भाई नास्तिक था और एक था आस्तिक। उस नास्तिक ने कहा कि तुम्हारे भगवान ने ये काम ठीक नहीं किया। वो तो खुद तो मानता नहीं है, तुम्हारे भगवान ने ये काम ठीक नहीं किया। क्या? कि बड़े बड़े जो घास है उसके तो फल छोटा छोटा लगा है, जैसे आम का गाछ है, जामुन का गाछ है, जैसे पीपल का गाछ है, बड़का गाछ है, तो उसके छोटे छोटे फल लगाए। और जो छोटा जो गाछ है उसके बड़े बड़े फल लगाए, जैसे बेल है तरबूज की, बड़ा तरबूज लगाया, जैसे बंगला जिसको बंगला में कहते हैं, पेठा कहते हैं, कोहरा कहते हैं, बड़ा बड़ा फल लगा। देखो इस आम के नीचे हम जो बैठे हैं यहाँ छोटा छोटा फल लगा। इतने में एक आम का फल टूट उसके सिर में लगा। वो कोई डेढ़ पाव का होगा, शर्म आकर के लगा। तब वो पास में बैठा बोला कि देखो जब ये 500 का होता तो ठीक किया तुम्हारे भगवान ने, अच्छा क्या अब हमारे समझ में आ गया। बोले मार पड़ने से समझ में आ गया। नास्तिक व्यास्तिक हो गया। तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की भूल होती है नहीं। भगवान जो कुछ करते हैं समझ बुझ कर करते हैं। भगवान ने जो कुछ हम लोगों को दिया है आत्मा के कल्याण के लिए दिया है। और जितनी वस्तु दी है हमारी आत्मा के कल्याण के लिए इतनी काफी है, और इससे और अधिक की कोई जरूरत नहीं। जरूरत समझते तो भगवान देते। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए न कोई धन की जरूरत है, न पुत्र की, न स्त्री की, न कोई ऐश्वर्य की जरूरत है। तो जो कुछ दिया है ये अधिक मात्रा में दिया है, इतनी की भी आवश्यकता नहीं थी। पर तुम्हारे ऊपर विश्वास करके भगवान ने तुम्हारे को ये अधिक दे दिया। अब तुम इसको भगवान के काम में लगा दो। तुम्हारा विश्वास करके भगवान ने दिया है तो तुम इसको भगवान की चीज को भगवान के काम में लगा दो। रुपया भगवान के काम में लगाना क्या, कि जिससे लोगों का परम हित हो उस काम के नाम पे खर्च करो, तुम अपने निजी काम में इतना खर्च मत करो। तुम्हारी दुकान है उसको भगवान की दुकान समझो, उसमें व्यापार करने की आवश्यकता उतना रुपया रख लो, बाकी भगवान का रुपया भगवान के काम में खर्च करो। मकान तुम्हारे को आवश्यकता उतना तो तुम उसको काम में लो, बाकी मकान जो है लोगों के हित के काम में लगाओ। ये मकान तुम्हारा नहीं है, भगवान का है, तुम समझते हो मेरा है। इसमें जो चूसे जो रहते हैं दिल घर करके, वो समझते हमारा है। चिड़िया ने जो घुसाड़ा डाले है वह समझते हमारा है। टांटियों ने जो छत्ता दी है वह समझते कि हमारा है। चींटियां जो इसमें रहती है वह समझते कि हमारा घर है। तो किसका घर? ये किसी का भी नहीं। कि ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रंग बसेरा है। ये घर न तो तेरा है न मेरा है। ये वृक्ष के ऊपर आकर के अपने चिड़िया वास करती है। इसी प्रकार से ये थोड़ा दिन के लिए तुम्हारा वास स्थान है, तो अपने अधिकार के माह इतने इस परमात्मा की प्राप्ति का काम सिद्ध कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के काम में लगे लगा लेना चाहिए। कोई यहाँ तो भजन करे चले करो, सत्संग करे बोले करो। इसी प्रकार से थी, जैसे रुपया है मकान है, ऐसी आपके मन जो बुद्धि है उस बुद्धि को भगवान के काम में लगाना चाहिए। भगवान का जो तत्व है इस बुद्धि के द्वारा समझना चाहिए। बुद्धि का काम है समझेगा, भगवान के गुण और प्रभाव को जानना चाहिए। ये बुद्धि का काम है। जीवा को लगा दो भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करने में, कान को लगा दो भगवान के गुण प्रभाव तत्व तो इसकी बातों को सुनने में, या भगवान के नाम रूप और चरित्र की बातों को सुनने में। नेत्रों को लगा दो प्रभु के प्यारे जो कुसुम का दर्शन करने में, या पुस्तक पढ़ने जिसमें ज्ञान बोध और भक्ति की बातें हो, जो भगवान की प्राप्ति में सहायक हो, उन पुस्तकों को पढ़ने में नेत्रों को लगा दो। मन को लगा दो भगवान के ध्यान में, हाथों को लगा दो सब में भगवत बुद्धि कर करके सबकी सेवा के काम में। इस प्रकार से सारी इंद्रियों का उचित उपयोग करो, इसलिए भगवान ने सब चीजें दी। रुपये चले हैं तो चिंता मत करो। एक तो इसलिए नहीं करना चाहिए कि भगवान ने तुम्हारे को जो रुपये दिए थे तुम उचित काम में लगाए नहीं, इसलिए भगवान ने अपना वापिस छीन लिया, मंगा लिया। दूसरी बात यह है कि ये रुपये तुम्हारे लिए बाधक थी, परमात्मा की प्राप्ति में बाधक थी। भगवान ने तो दिए थे तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए, तुमने लगा दिए कि वो भगवान, तो ये तुम्हारे लिए बाधक हो गए। शास्त्रों के द्वारा और महात्माओं के द्वारा तुमको बहुत समझा दिया, किंतु किसी की बात तुमने सुनी नहीं, तब भगवान ने अपना वापिस मना लिया। ये भी तुम्हारे हित के लिए बना है, तुम इसका उपयोग ठीक नहीं करते थे, दुरुपयोग करते थे, तो तुमको पाप से बचाया है। भोग और पाप ये मुक्ति में बाधक है। तुम्हारे को लड़का दिया कि तुम लड़के का बिलू करके उसको गीता सिखलाओ, भगवान का नाम सिखलाओ, रटन कराओ। जैसे कोई सुआ और मैना को पढ़ाते हैं और उसे भगवान का नाम सिखलाते हैं कि नारायण नारायण या हरिराम हरिराम कोई भी भगवान का नाम उसको सिखलाते हैं। जब पक्षियों को एक प्रकार से नाम सिखलाया जाता है तो तुम्हारा लड़का क्या पक्षी के समान में नहीं है, उसको रटाओ और उसके कानों के बीच के वहां अध्यात्म भी से सुनाना चाहिए और वो एक बात उसको सिखलानी चाहिए कि तुम्हारा लड़का भगवान का भक्त बन जाए तो इसमें तुम्हारा भी कल्याण, लड़के का भी कल्याण, औरों का भी कल्याण, सबका इसमें परम हित है। तुम ये तो सिखलाते नहीं, लड़का तुम्हारा उद्दंड होता जा रहा है, कर्तव्य का तो त्याग मैंने करने जो कार्य को तो करता नहीं, न करने जो कार्य करता है, ये उद्दंडता, ये प्रमाण। तो ये लड़का प्रमादी हो जाएगा तो भाग में तुम्हारे लिए हानि करेगा, तो तुम्हारे साधन में वर्तमान के साधन में और भविष्य के साधन में बाधा न आ जाए, इसलिए उसको मार दिया, अपने पास भगवान बुला लिया। किसमें तुम्हारा भला है, इस बात को जितना भगवान समझते उतना तुम नहीं समझते, तो इसलिए इसमें अपनी अक्ल लगाए नहीं। भगवान ने जो किया बड़ा अच्छा किया, मनुष्य को अपनी आवश्यकता घटा देनी चाहिए, उसमें मनुष्य का कल्याण बहुत शीघ्र हो जाता है। और भगवान उसकी आवश्यकता घटाते हैं तो उसमें कल्याण तो होता है किंतु विलंब लगता है। तुम्हारे पास बहुत सी संपत्ति है तो अब तुम उस संपत्ति को अपने शरीर निर्वाह के लिए कम खर्च करके बाकी सब दूसरों के हित के लिए खर्च करना शुरू कर दो तो ये तो तुम्हारे कल्याण का मार्ग है, और इससे विपरीत खर्च करो तो ये उल्टा मार्ग है। तुम विपरीत काम में खर्च करते हो लोगों का अनिष्ट करने में और अपनी काम वासना पूर्ण करने में, भोग भोगने में, परमार्थ में खर्च करते हो तो उसका फल होता है पाप। तो तुम्हारे को पाप से बचाने के लिए भगवान ने संपत्ति नष्ट कर। जैसे पतंगे जानवर है जिसको सर्प कहते हैं, जब आपने बिजली की रोशनी करी तो वे जानवर आकर के पड़ते हैं, मरते हैं, लालटेन के ऊपर पड़ते हैं, दीपक के ऊपर पड़ते हैं। तुम सोच रहे हो कि इनकी जान कैसे बचे, बहुत से उपाय किए किंतु वे तो आकर के पड़ते हैं, मरते हैं। तो ये सब सोच करके तुमने लालटेन बुझा दी, बिजली बुझा दी, बस बस। तो पतंगे जानवरों को ये बात बड़ी बुरी मान देती, पतंगे कहते हैं कि हम तो अन्न लूट रहे थे, इसमें किसने बाधा डाली, किंतु बिजली बुझाने वाला, लालटेन बुझाने वाला उनका हित करता है, उनकी जान बचाता है, किंतु इस बात को वे जानवर नहीं समझते कि तुम्हारे पर बड़ी भारी दया करे। इसी प्रकार से थी, हम लोग इस प्रकार से नहीं समझते जानवरों की बात भी, कि विषय भोगों के, विषय भोगों का जो समूह है, रुपया है, कंचन कामनी, शब्द स्पर्श रूप सुगंध, उनका साधन भूत रूपी, ये जो भगवान नष्ट कर देते हैं तो हमारे इसके लिए करते हैं, ये तो हम इसके बीच के वहां फंस जाते, मर जाते। भगवान ने देखा कि विषय भोगों के वहां एकदम फंस गया और फंस रहा है, तो इसके लिए ये उपाय है, ये इस चीज को नष्ट कर दो। चीज का जब अभाव हो जाता है, चीज हमको मिलती नहीं, तो फिर आप ये तर्स कर रहे हैं, ये
इसमें भी हमारे लाभ तो है, किंतु पूर्ण लाभ है उन विषय भोगों में फंस करके मृत्यु से बच गए। और यदि इन विषय भोगों का पदार्थ होगा